आयशा लिफ्ट से ऊपर पहुंच गई थी। नक्श के फ्लोर तक जाने के लिए उसे काफी आगे तक चलकर जाना पड़ा। आयशा मिलने तो नक्श से आई थी, लेकिन उसके दिमाग में इशिका चल रही थी, जो थोड़ी देर पहले रिसेप्शनिस्ट से अंदर जाने की जिद कर रही थी। आयशा मन ही मन बोली, कितनी बेशर्म लड़की है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी यहाँ पर खड़ी होकर मिस्टर अभिमन्यु राजवंत से मिलने की जिद कर रही है। उसे क्या लगता है कि वो अपनी खूबसूरती से उसका दिल पिघला देगी? जैसे उसने नक्श को अपने पीछे पागल किया था, वैसे अभिमन्यु राजवंश उसके पीछे नहीं आने वाला है। नक्श ने भी एक मोमेंट के बाद उसे छोड़कर मुझसे शादी करने का डिसीजन लिया, और वो अभिमन्यु राजवंश को अपने जाल में फंसाने का सोच रही है, बेवकूफ कहीं की। आयशा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जैसे ही वो नक्श के केबिन के सामने आई, उसने खुद के चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ओढ़ ली। नक्श से मिलने के लिए आयशा खास तैयार होकर आई थी। उसने ग्रे कलर का डिज़ाइनर वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, बालों को कर्ल करके उसमें अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। चेहरे पर हैवी मेकअप और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ आयशा ने नक्श के केबिन के अंदर कदम रखा। इसे काम करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? नक्श को देखकर आयशा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। नक्श काम करने में बिजी था। वो भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था, लगभग 5 फुट 10 इंच के आसपास हाइट, गोरा रंग, मस्क्यूलर बॉडी, गहरी भूरी आंखें और वैसे ही गहरे भूरे सेट किए हुए बाल। नक्श के होठों से थोड़ा ऊपर एक बड़ा सा तिल था। अचानक नक्श का ध्यान आयशा की तरफ गया। उसने कुछ खास खुशी नहीं दिखाई, दिखाता भी कैसे, उसे इशिका से प्यार था, पर मजबूरी में आयशा के साथ आना पड़ रहा था। कैसे हो तुम बेबी? आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा। नक्श उठकर आयशा के पास आया। अचानक उसकी नज़र आयशा के गालों पर पड़ी, जो सूजे हुए लग रहे थे। नक्श ने आयशा के होठों पर हल्के से हाथ रखकर भौहें उठाकर पूछा, ये सब क्या है? इशिका ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, आयशा ने जवाब दिया। वो इशिका को नक्श की नज़रों में गिराना चाहती थी। आयशा को लगा ये सुनकर नक्श को गुस्सा आएगा, पर नक्श ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उससे पंगा मत लेना, डिफेंस आर्ट में अच्छी है वो। नक्श ने इशिका का काफ़ी सालों तक पीछा किया था, तो उससे इशिका से जुड़ी हुई बात छुपी कैसे रह सकती थी? हाँ, मेरी ही गलती थी। उसके बारे में बात नहीं करते हैं ना? आयशा ने मासूम बनते हुए कहा। नक्श ने हाँ में सिर हिला दिया। बातचीत का रुख बदलने के लिए आयशा ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा नया प्रोजेक्ट न्यू एनर्जी से रिलेटेड है। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर मर्चेंट हमारे घर पर आने वाले हैं? मेरी मॉम ने उन्हें डिनर पर बुलाया है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकें तो? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नक्श ने भौहें उठाकर पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। हाँ, क्यों नहीं, तुम बस अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल लेना, ताकि तुम भी उस डिनर में प्रेजेंट रह सको, आयशा ने खुश होकर बताया। डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट में शामिल होने का सुनते ही नक्श का बिहेवियर बदल गया था। उसने आयशा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके गाल को अपने गालों से सहलाते हुए कहा, इशिका सच में बहुत बदतमीज और रूढ़ है, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा हुआ ना उसकी सच्चाई वक्त रहते सामने आ गई और तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं हुई, आयशा ने मुस्कुराकर कहा। नक्श ने हाँ में सिर हिलाया। उसने फिर आयशा के होठों को अपने होठों से हल्का सा छूते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे इस दर्द का एक अच्छा सा इलाज है, एक प्यारा सा किस, जिसके बाद तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। किस करने से पहले नक्श ने आयशा की परमिशन मांगी, तो आयशा ने मासूम बनते हुए अपनी पलकें झपका दी थीं। अगले ही पल नक्श ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसे काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था। आयशा ने अपने मन में कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किससे प्यार करते हो? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारी शादी होने वाली है, और उससे भी बड़ी बात, मैं तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। देखा तुमने इशिका, अमीर लोगों के लिए प्यार का कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें बस अपनी सक्सेस से लेना देना होता है। जो लड़का कल तक तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमता था, आज वो डॉक्टर मर्चेंट का नाम सुनते ही मेरा दीवाना होकर खुद से किस करने की पहल कर रहा है। आयशा को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कभी नक्श इशिका से प्यार करता था। उसे मतलब था तो राजवंश खानदान की बहू बनने से। वो बहुत अमीर थे, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरियस थी, और आयशा को वही चाहिए था। वहीं नीचे लॉबी में इशिका आराम से काउच पर बैठी हुई थी। उसने अभिमन्यु को अपना एड्रेस भेज दिया था। वो काफ़ी देर से वहाँ पर बैठी थी। जब रिसेप्शनिस्ट की नज़र वापस उस पर पड़ी तो वो गुस्से में आग बगुला हो गई। रिसेप्शनिस्ट ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ आने का इशारा किया और इशिका के पास लेकर पहुंची। वो इशिका को देखते हुए काफ़ी एटीट्यूड से बोली, मिस सिन्हानिया, आप यहाँ से गई नहीं अभी तक, आपकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाइए, वरना ये लोग आपको धक्के मारकर निकाल देंगे। इशिका ने हैरानी से रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। वो तो चुपचाप बैठी हुई थी, वेटिंग एरिया में कोई भी आकर बैठ सकता था। ऊपर से इशिका तो शोर भी नहीं मचा रही थी, फिर वो उसका काम कैसे डिस्टर्ब कर रही थी ये उसे समझ नहीं आया। इशिका ने बोरियत भरे लहजे में रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहा,
लगता है आपका अपने काम पर फोकस नहीं है। तभी काम करते वक्त बार बार आपकी नजरें मुझ पर आ रही थी। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि यहाँ पर अपने लिए एक अलग से केबिन बनवा लीजिए, फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और बहुत हो गया, रिसेप्शनिस्ट गुस्से में बोली। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वैसे भी पृथ्वी सर ने मना किया था कि इसे यहाँ नहीं आने देना है। रिसेप्शनिस्ट के ऑर्डर देते ही सिक्योरिटी गार्ड्स हरकत में आ गए थे। वो कुछ करते तभी अचानक पूरी लॉबी शांत हो गई, क्योंकि प्राइवेट लिफ्ट के रुकने की आवाज आई। वो प्राइवेट लिफ्ट सिर्फ अभिमन्यु के यूज के लिए थी, तो सिक्योरिटी गार्ड अपना काम छोड़कर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। लिफ्ट में से अभिमन्यु पृथ्वी के साथ बाहर निकला। वो चारों तरफ इधर उधर देख रहा था, मानो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही अभिमन्यु की नजर इशिका पर गई, वो आइज रोल करके बोला, नॉट अगेन, ये लड़की फिर से यहाँ पर आ गई। पृथ्वी ने उसकी नजरों को फॉलो करके इशिका को देखा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। उसने अभिमन्यु से कहा, मैं देखता हूँ उसे। अभिमन्यु फिर से इशिका से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहा जबकि पृथ्वी इशिका के पास आ गया। पृथ्वी को देखकर रिसेप्शनिस्ट घबरा गई। वो जल्दी से अपना पक्ष रखते हुए बोली, सर मैंने आपके ऑर्डर्स अच्छे से फॉलो किए थे और इसे अंदर नहीं जाने दिया। ये फिर से पार्सल देने का बहाना बनाकर आई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने इसे यही कहा कि आज हमारा कोई पार्सल नहीं आने वाला है। इशिका ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर बेपरवाही से कहा, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं कोई पार्सल देने के लिए आई हूँ? देखा सर आपने, कितनी बेशर्मी से ये मान भी रही है कि ये यहाँ बेवजह आकर बैठ गई है। इसे फिर से ऊपर जाकर किसी से मिलना था, खामखा हंगामा मचा रही है। बस तभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, रिसेप्शनिस्ट ने मासूम बनते हुए कहा। इशिका ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचकाकर कहा, अच्छा तो मैं यहाँ चुपचाप बैठकर तुम्हारा काम डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ लॉबी में बैठना अलाउड नहीं है। वेटिंग एरिया में चुपचाप वेट करना इतना बड़ा गुनाह हो गया। हंगामा मैं नहीं तुम कर रही थी।
इशिका रिसेप्शनिस्ट की फाइट से पृथ्वी इरिटेट हो गया था। वो बीच में तेज आवाज में बोला, ठीक है इसे जितनी देर बैठना है बैठे रहने दो, वैसे भी इस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। इशिका के मामले को निपटाकर उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मिस्टर राजवंश के प्राइवेट कंप्यूटर में कुछ ग्लिच आ गया है। मैंने इंजीनियर को कॉल किया था तो तुम्हें किसी को ठीक करने के लिए भेजने वाला था। वो अब तक आया क्यों नहीं है? मैंने इंजीनियर को कॉल किया तो उसने कहा कि उसका भेजा हुआ टेक्नीशियन यहाँ आ चुका है और उसे अंदर नहीं आने दिया गया। क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया, रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से कहा। मेरा यकीन मानिए सर, मैं अपना काम बहुत सीरियसली करती हूँ और यहाँ पर कोई नहीं आया जिसे मैंने रोका हो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहा है? पृथ्वी गुस्से में बोला और अपना मोबाइल निकाला। वो इंजीनियर को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे इशिका की आवाज़ सुनाई थी। इशिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इसने मुझे रोका था, मेरी बात तक नहीं सुनी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं यहाँ हंगामा मचा रही हूँ और न जाने क्या कुछ नहीं कहा मुझे। पृथ्वी हैरानी से इशिका की तरफ देख रहा था। कल वो यहाँ पर एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आई थी तो आज एक टेक्नीशियन बनकर, ऐसा कैसे पॉसिबल था? वो कुछ पूछता उससे पहले इशिका ने उसके हाथ में एक पेपर थमा दिया, जो पेपर उसने पृथ्वी को दे दिया। उस पेपर के हिसाब से वो उस इंजीनियर के अंडर पिछले 5 सालों से काम कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट की तरह इशिका ने भी सब कुछ काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया था। फिर उसकी नजरें अभिमन्यु पर टिकी हुई थीं। उसे देखना था कि अभिमन्यु क्या फैसला लेता है। सब कुछ सुनने के बाद अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से रिसेप्शनिस्ट को देखा और तेज आवाज में कहा, यू आर फायर्ड, अभी तक की अपनी जितनी भी सैलरी है लो और निकलो यहां से। लेकिन निकालने की क्या जरूरत है सर, इसे एक छोटी सी गलती हुई है, इसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दीजिए, ये अपना काम काफी अच्छे से कर रही है, पृथ्वी ने रिसेप्शनिस्ट का साथ देते हुए कहा, जबकि रिसेप्शनिस्ट की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि इतनी बड़ी गलती के बाद वो सॉरी बोल सके। रिसेप्शनिस्ट के बाद अभिमन्यु ने गुस्से से पृथ्वी की तरफ देखा, मानो वो आगे कुछ और बोला तो अभिमन्यु उसे भी काम से निकाल देगा। इशिका इन सब में काफी ज्यादा हैरान थी। अब तक उसने सुना था कि अभिमन्यु काफी क्रूअल है, लेकिन आज उसने देखा भी लिया, एक छोटी सी गलती पर उसने रिसेप्शनिस्ट को काम से निकाल दिया था जो न जाने कितने सालों से उनके यहाँ काम कर रही थी। इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, कम ऑन इशिका, तुम्हें इससे डालना नहीं है, तुम्हारी असली पहचान भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, पर मुझे इसका बिहेवियर देखकर अजीब क्यों लग रहा है। इशिका ने रिसेप्शनिस्ट का साथ देने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन अभिमन्यु फिर से बीच में बोल पड़ा, अपना काम करो और निकलो यहाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है मिस सिंघानिया। भाई, इशिका का पाला सच में एक ऐसे इंसान से पड़ा है जो क्रूअल, रूड और एरोगेंट है, पर अभी असली बातें सामने आई ही कहाँ हैं। पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पाठ पर मिलते हैं। देखते हैं आज इशिका अपनी बात अभिमन्यु से कह पाती है या नहीं।